पंचाध्यायी लेक्चर नंबर 14 ओ सिद्धेव्य ओ नमः सिद्धेव्य ओ नमः सिद्धेव्य ओ शुद्धात्मने नमः नमो अहंकारं नमो सिद्धाणं नमो तत्त्वं सल्लक्षणिकं सन्मात्रं वायतः स्वतः सिद्धं तस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निर्विकल्पं च। यह ग्रंथराशि पंचाध्यायी है और उसके पृष्ठ संख्या 35 पर हम आ गए हैं। 148 तक के श्लोक और उसका अर्थ भावार्थ देखा था। यहाँ बातें व्यतिरेक की चल रही थी, उसमें हमने देश व्यतिरेक क्षेत्र व्यतिरेक देखा था, अभी काल व्यतिरेक की बात चालू हो जाएगी। 145 में शंकाकार ने एक शंका पूछी थी कि गुणों का शत्रु अन्वय एक होने पर भी उनमें व्यतिरेकीपना होना चाहिए क्योंकि वे अनेक है, यानी वो ये कहना चाहता है कि जैसे ज्ञान में जानने का भाव है, दर्शन में देखने का भाव है, इसलिए सब में भिन्न भिन्न भाव है, इसलिए वो व्यतिरेकी होने चाहिए। वो शंका करके उस शंका का समाधान करते हुए बता रहे हैं पेज नंबर 34 पर नीचे से दूसरी लाइन कि ये शंका ठीक नहीं, क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक में विशेषता है। व्यतिरेक ही अनेक होते हैं और सब अन्वयी गुण नियम से एक होता है। उसके बाद उन्होंने देश व्यतिरेक में ये बात बताई, यहाँ दो द्रव्यों की बात नहीं है, एक द्रव्य का दूसरे में अभाव देश व्यतिरेक नहीं है, यहाँ तो गुणों की बात चल रही है। 35 नंबर का पृष्ठ, तो गुणों में हमने ये बात देखी थी कि एक ही द्रव्य के जो पेज नंबर 35 जो देश व्यतिरेक हमने लास्ट टाइम देखा था उसी को दोहरा रहे हैं। एक ही द्रव्य के जो अनेक प्रदेश होते हैं वे आपस में व्यतिरेक रूप है, जो एक प्रदेश है वह वही प्रदेश है, दूसरा प्रदेश नहीं है, उसको देश व्यतिरेक कहा। क्षेत्र व्यतिरेक में हमने ये बात देखा था कि एक ही द्रव्य की बात है, यहाँ पर आकाश क्षेत्र की बात नहीं है कि एक द्रव्य का एक प्रदेश अपने जितने क्षेत्र में है वह प्रदेश ही उसका क्षेत्र है, ये बात हमने क्षेत्र व्यतिरेक में देखी थी। अब काल व्यतिरेक की बात यहाँ शुरू होगी, उसके लिए 149 नंबर हम पढ़ेंगे, यहाँ से आज का विषय शुरू होता है। पहली लाइन में जो है ना अपि एकस्मिन् समये एकाप्यवस्था, वो एकाप्यवस्था होनी चाहिए मेरे ख्याल से, एक अपि अवस्था, वो ए ऐसा निकालते ना, इस तरह से देखो पढ़ेंगे, अपि चैकस्मिन् समये एकाप्यवस्था भवेन साप्यन्या भवति च सापि तदन्या द्वितीय समयेपि काल व्यतिरेक। और एक समय में जो भी अवस्था होती है वह दूसरी नहीं है, वह वही है, और दूसरे समय में भी जो अवस्था होती है वह दूसरी ही है, वह पहली नहीं है। एक द्रव्य में ही एक एक समय में एक एक पर्याय होती है, जो जिस समय के पर्याय वह वही है वह अन्य नहीं है, ये बात बता रहे हैं। एक ही द्रव्य के एक पर्याय का दूसरी पर्याय से भिन्नपना है, यह काल व्यतिरेक है। पेज नंबर 35 भावार्थ। एक द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का दूसरे द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अभाव है, वहां तो एक द्रव्य की एक पर्याय का दूसरे द्रव्य की पर्याय में अभाव अर्थ है, वह अर्थ यहाँ नहीं है। यहाँ तो एक ही द्रव्य की बात है, एक द्रव्य की एक समय की एक पर्याय उसी द्रव्य की दूसरे समय की दूसरी पर्याय से भिन्न है, यह काल व्यतिरेक है। वह पर्याय वही है दूसरी नहीं है, यानी जो जिस समय में है वह वही है, वह अन्य नहीं है। केवल प्रागभाव प्रध्वंसाभाव इतना ही नहीं है, भविष्य भूत भविष्य इतना ही नहीं लेना है, तो जिस जब समय की जो पर्याय बस वह वही है, वह अन्य नहीं है, उसका दूसरे में अभाव ऐसी मत नहीं, वो वही है वह अन्य नहीं है। अन्य किसी भी पर्याय के साथ यही बात होगी।
दो पॉइंट बताए आपको।
हाँ,
एक पॉइंट यह है कि एक पर्याय जो हुई एक समय की, उसके बाद की जो पर्याय है वो नहीं है, पहली नहीं है, एक बात यह हो। और दूसरी बात, जो दूसरी पर्याय होगी या हुई वो वही होगी, अन्य कोई नहीं होगी। फिर से देखो,
दूसरी पर्याय दूसरी है, पहली नहीं है, पूर्व की नहीं है। यह व्यतिरेक के बोलने का ढंग है, इसका लक्षण ही ऐसा है, यानी जो जिस समय की पर्याय वह वही है, अन्य नहीं है। अन्य किसी अन्य सेकंड पर्याय की बात कर रहे हैं, कोई भी अन्य पर्याय वो अपनी समय की वही है, वो अन्य नहीं है। यानी द्रव्य के प्रत्येक समय की सुनिश्चित पर्याय है, वो अन्य कुछ अन्य पर्याय नहीं है। भले लगातार केवल ज्ञान होता रहे, जिस समय का जो केवल ज्ञान वह वही है, वह अन्य नहीं है। अब भाव व्यतिरेक बोल रहे हैं, 150 नंबर। भवति गुणांशः कश्चित् स भवति नान्यो भवति स चाप्यन्यः सोऽपि न भवति तदन्यो भवति तदन्यो विभाव व्यतिरेक। एक द्रव्य के एक गुण का कोई एक गुणांश है, वह गुणांश वही है, दूसरा गुणांश नहीं है। हाँ, और वह दूसरा गुणांश भी वह पहला नहीं है, वह दूसरा गुणांश दूसरा ही है, यह भाव व्यतिरेक है।
भाव का अर्थ क्या था? यहाँ भाव क्या
है? अविभाग प्रतिच्छेद इसके।
अविभाग प्रतिच्छेद
गुणांश यानी गुणों के अंश, यानी अविभाग प्रतिच्छेद। जो अविभाग प्रतिच्छेद वह वही है, वह दूसरा नहीं है, उसका भाव पढ़ेंगे।
लेकिन अविभाग प्रतिच्छेद भी प्रतिच्छेद भी अनंत है ना?
हाँ, अनंत है।
जो है
वो वही है, वो अन्य नहीं है। देखो भावार्थ, यहाँ दो द्रव्यों के परस्पर गुणों के अभाव की बात नहीं है, यानी दो द्रव्यों के भेद की बात तो यहाँ कहीं पर नहीं, एक ही द्रव्य में सब लागू कर। वह तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अभाव में है, यानी वो तो अत्यंत अभाव में घटित हो जाएगी, तथा एक ही द्रव्य के अनंत गुणों में परस्पर व्यतिरेक भी नहीं है, यानी एक द्रव्य दूसरे गुण रूप नहीं है, वो बात यहाँ नहीं ले रहे। यह अर्थ नहीं है कि एक द्रव्य का जो ज्ञान गुण है वह ज्ञान ही है, दर्शन नहीं है। गुणों में व्यतिरेक होता ही नहीं, अन्वय ही होता है। व्यतिरेक ने वह वह नहीं है, अन्य है, वो व्यतिरेक, और वही का वही होना वो अन्वय। किंतु क्योंकि प्रश्नकार ने यही प्रश्न पूछा था कि जो ज्ञान है वो दर्शन नहीं है, तो उनमें गुणों में व्यतिरेक है, तो इसके लिए कहते हैं गुणों में व्यतिरेक होता ही नहीं, अन्वय ही होता है। किंतु एक द्रव्य के किसी एक गुण के जो शक्ति के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, वो प्रतिच्छेद यानी च और छ चाहिए, प्रतिच्छेद हुआ है, प्रतिच्छेद चाहिए, उनको गुणांश कहते हैं। उसमें किसी एक गुण का कोई एक गुणांश ले, वह गुणांश वही है, दूसरा गुणांश नहीं है, वह दूसरा गुणांश भी वह दूसरा ही है, पहला नहीं है। इस प्रकार एक ही गुण के अनंत विभाग प्रतिच्छेदों का यहाँ भी चर्चा करना, जो परस्पर व्यतिरेक है वह यहाँ इष्ट है, इसको भाव व्यतिरेक कहते हैं। एक प्रदेश है वही है, वह दूसरा नहीं है,
और पीछे भाव में लगता है, तो एक प्रदेश में जो भाव है वो दूसरा प्रदेश में भाव नहीं
है। भाव के प्रदेशों में भाव नहीं लगा रहे, प्रदेश में प्रदेश है, वो क्षेत्र है उसका। देश व्यतिरेक में प्रदेश को लिया था, और फिर जो जिस आकाश के क्षेत्र में स्थित है, देखो निकालो, फिर देश व्यतिरेक और क्षेत्र व्यतिरेक 35 पृष्ठ पर भावार्थ की सेकंड लाइन देखो। एक ही द्रव्य के जो बहु प्रदेश है वे आपस में व्यतिरेक रूप है, जो एक प्रदेश है वह वही है, वह दूसरा नहीं है। इसके लिए हमने वो दीवार के लगी टाइल्स देखी थी, जो एक टाइल है वह वही है, वह दूसरी नहीं है। ये देश व्यतिरेक हुआ, यानी द्रव्य में जितने भी प्रदेश है वो परस्पर व्यतिरेक हुआ। अब क्षेत्र व्यतिरेक में क्या लिया,
भावार्थ लिया, देश ही कर लिया था, यहाँ पे जो देश की बात की,
देश यानी प्रदेश,
एक ही प्रदेश पे जिनके असंख्य प्रदेश है,
नहीं उसको नहीं लेना। असंख्य प्रदेश हो, आकाश के एक प्रदेश में कहो या परस्पर अवगाहना रूप से रहो, परंतु एक प्रदेश है वो दूसरे प्रदेश में अभाव रूप ही है, उनका परस्पर जो जो है वो वही है, वो दूसरा नहीं है। भले वो सुपर इम्पोज है, परंतु उसकी जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है। क्षेत्र व्यतिरेक में हमने क्या देखा था, एक द्रव्य का एक प्रदेश जितने क्षेत्र में वह प्रदेश ही उसका क्षेत्र है, वही पर वो रहता, दूसरे के क्षेत्र में नहीं रहता, अपना अपना प्रदेश में रहता। काल व्यतिरेक में क्या देखा हमने, पूरा द्रव्य के अनादि अनंत पर्याय लेना है, जो पर्याय जिस समय है वह वही है, वह दूसरी पर्याय नहीं है। अब भाव व्यतिरेक में प्रत्येक गुण में जो अनंत विभाग प्रतिच्छेद है उसको लेना है, एक गुण का दूसरे गुण रूप नहीं होना, वो यहाँ नहीं लिया है। गुणों को तो अन्वय रूप से ही लिया उन्होंने, व्यतिरेक होता ही नहीं इस तरह से लिया है। तो कहते हैं वो जो गुणांश है, एक एक गुण में जो अनंत विभाग प्रतिच्छेद है, वो जो एक प्रतिच्छेद है वो स्वरूप से दूसरे रूप से, वो पहला पहला है दूसरा नहीं है, जो दूसरा है वो पहला नहीं है, इसको भाव व्यतिरेक में लिया है।
प्रतिच्छेद क्या अभिभाग प्रतिच्छेद जो है वो तो हर समय बदलते रहते हैं ना,
उन्हें भी कितने प्रकट है उसमें बदलते रहते हैं, परंतु जितने जो है उसके जो डिग्रीज है अलग अलग, जितने उसमें हो सकते हैं गुण में जितने हो सकते हैं, यहाँ पर्याय रूप प्रकट वाली बात नहीं है।
ठीक है, माने तो फिर केवल माने ज्ञान की अपन बात करें तो ज्ञान में कितने हैं,
अनंत है,
माने अनंत तो सभी में है।
हाँ।
लेकिन वहाँ आप केवल ज्ञान लेंगे कि क्या लेंगे,
गुणों के अंश लेना, वो पर्याय रूप नहीं लेना है, गुणों में जो है वो पर्याय में उसमें से कुछ प्रकट होते हैं, परंतु गुणों में कुछ शक्ति है कि नहीं अपने में गुण, उसके अंश लेना, यानी वो पर्याय को वहाँ गुणांश कहा था वो नहीं लेने हैं।
आपका जो कहना है
कि मैक्सिमम लेना, इसलिए मेरे को ऐसा
नहीं लेते, एनी गिवन वन टाइम
आया,
अभी हम समझने के लिए हम गुणांश देख रहे हैं ना, उनमें जो अभिभाग प्रतिच्छेदक एक समय में जो होंगे तो उसमें दूसरे समय में बदलेंगे उसकी बात नहीं है, तो अभी एक समय में जो अनेक उसके अनुभाग प्रतिच्छेद हैं, तो एक दो तीन चार ऐसे दस भी आप गिन लो, तो दस भी गिनो तो जो एक है वो दूसरा और एक जैसा नहीं, मतलब दोनों अलग अलग हैं, अलग नहीं होते तो दो मिलकर एक हो जाता है। अलग अलग के एक हो जाते हैं, इसलिए दस है और दस जुदे जुदे हैं। या भारत में लगाना, बनौत में भी लगाना, प्रदेश में भी लगाना, काल में भी लगाना। अभी आप जो कह रहे हैं कि हर समय वो अभिवाद कर दीजिए, बदलते हैं ना, बदलते हैं ना, तो उसके बाद कहाँ आएगा
वो पर्याय में चला जाता है। गुण में उसके अपने अविभाग अंश है कि नहीं? गुणों के जो अपने अंश है, एक अंश दूसरे रूप नहीं है, दूसरे रूप नहीं, एक जो अंश है वो वही है, वो दूसरा नहीं है।
अभी आपका प्रश्न वही है, इसका उत्तर यही है।
मैंने एक एक गुण में जो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है उसके परस्पर में भिन्नता लेना, जैसे हमने वो भाव में लेना है, जैसे हमने क्षेत्र में प्रदेश में कैसे लिया, एक प्रदेश है वो वही है, वो दूसरा नहीं है। अब इसके अनेक अनंत अंशों में लेना, एक अंश है वो वही है, वो दूसरा नहीं है।
अरे आपका ऐसा मतलब है कि एक प्रदेश अनेक अन्य प्रदेशों को भी अवधारणा देता है, अवधारणा देता है, वो एक नहीं हो जाता। अरे कलर अलग अलग थी, अरे केंद्रीय अलग अलग, नहीं तो असंख्यात प्रदेश कैसा कहते हैं।
अभी हम आते हैं 151 पढ़ेंगे। यदि पुनरेवम न स्यात् स्यादपि चैवं पुनः पुनः सैष एकांश देशमात्रं सर्वं स्यात् तन्न बाधितत्वात् प्राक्। यदि ऐसा न होवे, अर्थात एक ही द्रव्य में इस प्रकार का व्यतिरेक न होवे और पुनः पुनः यह वही है यह वही है ऐसा होवे, तो संपूर्ण एक वस्तु एक अंश एकांश देश मात्र रह जाए, अर्थात हर एक द्रव्य एक प्रदेश एक प्रदेशी क्षेत्र एक ही गुण वाला और एक ही पर्याय वाला हो जाएगा। देखो क्या कहना चाहते हैं, यह वही है यह वही है, उसका प्रत्येक प्रदेश हम यह वही है यह वही है वही यही है कहेंगे तो पूरा वस्तु पूरी वस्तु एक प्रदेश मात्र रह जाएगी। अब कहते हैं एक ही गुण वाला, एक ही गुण वाला ने एक अंश वाला, गुण का एक अंश वाला हो जाएगा, यह वही है यह वही है वही, तो अनंत विभाग प्रतिच्छेद ही नहीं घटित होगी, एक ही हो जाएगा। पर्याय की अपेक्षा यह वही है यह वही है यह वही है, तो एक ही पर्याय अनंत काल तक वही का वही रहेगी, वो तो उसमें कोई बात ही नहीं, डिफरेंस ही नहीं हो सकता। देखो फिर पढ़ते हैं, यदि ऐसा न होवे, अर्थात एक ही द्रव्य में इस प्रकार का व्यतिरेक न होवे और पुनः पुनः यह वही है ऐसा होवे, तो संपूर्ण एक वस्तु एकांश देश मात्र रह जाए, अर्थात हर एक द्रव्य एक प्रदेश एक प्रदेशी क्षेत्र एक प्रदेश है, पूरा द्रव्य मिलकर एक उसका एक ही हो जाएगा प्रदेश, और क्षेत्र कितना रुकेगा तो एक प्रदेशी क्षेत्र एक ही गुण वाला, यानी गुण तो एक हो जाएगा, उसका अंश भी वही का वही हो जाएगा एक, और एक ही पर्याय वाला हो जाएगा। यह पहले यानी 68, 69, 70 में बाधित किया जा चुका है, पहले हमने देखा था इसको विस्तार से। अब कहते 152 में अयमर्थः पर्यायः प्रत्येकं किल यथैकशः प्रोक्ता व्यतिरेकिणो यनेके न तथानेकत्वतोऽपि सन्ति गुणाः। ऊपर कहे हुए कथन का खुलासा इस प्रकार है कि अयमर्थः, ठीक है ना, पर्याय प्रत्येक भिन्न भिन्न जैसे एक एक करके कही गई है, वे व्यतिरेकी है और अनेक है, वैसे गुण अनेक होने पर भी वैसे व्यतिरेकी नहीं, पर्याय जैसे व्यतिरेकी नहीं, पर्याय तो एक जो पर्याय वह वही है वह दूसरी पर्याय नहीं है, पर्याय का व्यतिरेक है ना, परंतु गुण भले अनेक है, एक द्रव्य में अनंत गुण है, तो पर्याय जैसे व्यतिरेकी नहीं है, उसमें कथनचित वो एकपना भी पाया जाता है। क्योंकि किसी एक गुण को देखेंगे तो द्रव्य वही है, ज्ञानमय कहेंगे, उसी पूरे द्रव्य को सुखमय कहेंगे। ये हमने देखा था ना उसमें अन्वय अन्वयी, गुण को अन्वयी कहा था, तो उसकी अपेक्षा से वही का वही है द्रव्य, चाहे जिस गुण के द्वारा हम उसको संबोधित करें। देखो ते गुण 152 नंबर का श्लोक 36 पे, गुण अनेक होने पर भी वैसे व्यतिरेकी नहीं, वैसे नहीं पर्याय जैसे व्यतिरेकी नहीं।
पर्याय तो कहा
बिल्कुल, पर्याय तो एक, देखो अब इसके हर समय में एक एक पर्याय, यह पर्याय वो वही है दूसरी नहीं है, ये सेकंड पर्याय वो सेकंड है, वो पहली या तीसरी या अन्य कुछ भी नहीं है, प्रत्येक पर्याय वही है जो हम जिसका जिसकी बात कर रहे हैं, वो अन्य
किसी बदलती
है, हर पर्याय अपने स्व समय पर निश्चित है, वह वही है, वह अन्य नहीं है, उस समय की वह पर्याय है बस। हमने कहा अभी हम इसको 7 नंबर की पर्याय कहे, 7 नंबर की पर्याय वो 6 नंबर की पर्याय वो नहीं है, वो अन्य ही है, अन्य किसी को हम नहीं कह सकते, यह वही पर्याय। तो 7 नंबर की पर्याय फिर आएगी 14 नंबर पर, एक पर्याय के समय के लिए बस, वो फिर कभी नहीं होती। अनादि अनंत काल में जो जिस समय की पर्याय है वह वही है, अन्य नहीं है, ये बात न की है। तो यहाँ हमने 4 प्रकार के व्यतिरेक देखा, देश व्यतिरेक, देश में प्रदेश लेना, द्रव्य का प्रदेश प्रत्येक प्रदेश वह वही है अन्य नहीं है, वो देश व्यतिरेक है। क्षेत्र व्यतिरेक यानी वो जो प्रदेश है वही उसका क्षेत्र है, वहाँ वह क्षेत्र वही है, वो अन्य नहीं है। काल में लेना पर्याय, जिस समय जो पर्याय वह वही है अन्य, पहले ही पर्याय पहली ही है दूसरी नहीं है, अब हम दूसरी पर्याय को देखिए वो दूसरी दूसरी है, वो पहली नहीं है, उसको कहेंगे काल व्यतिरेक। भाव व्यतिरेक में अलग बात बताई, एक गुण वो दूसरे गुण रूप नहीं है, वो यहाँ नहीं लिया। भाव व्यतिरेक में एक गुण में जितने अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, वो एक अविभाग प्रतिच्छेद दूसरे अविभाग प्रतिच्छेद रूप नहीं है, वो बात यहाँ ली। और कहते यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो एक प्रदेश वही दूसरा हो जाएगा, तो पूरा द्रव्य मिलकर एक प्रदेश ही हो जाएगा, उसका क्षेत्र भी एक प्रदेश होगा, और काल की अपेक्षा एक ही पर्याय दूसरी भी वही पर्याय तीसरी भी वही पर्याय ऐसे कहेंगे हम, तो पूरे एक पर्याय वाला ही द्रव्य हो जाएगा। और गुणों के भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद ये वही है वही है वही है कहेंगे, तो एक ही अविभाग प्रतिच्छेद हो जाएगा उसका, जिसको एक गुण वाला कहेंगे। अब 152 नंबर जो हमने पढ़ा उसमें ये बात है कि ऊपर जो हमने देखा उसका खुलासा यह है कि पर्याय प्रत्येक भिन्न भिन्न जैसे एक एक करके कही गई है, वे व्यतिरेकी है और अनेक है, वैसे गुण अनेक होने पर भी वैसे व्यतिरेकी नहीं, ये महत्व की बात है। गुण अनेक है और हरेक को हमने अलग अलग नाम दिया है, जैसे पर्याय व्यतिरेकी है वैसे गुण व्यतिरेकी नहीं है, उनको तो अन्वयी कहा है गुणों को। देखो इसी का भावार्थ देखेंगे, जैसे ऊपर एक एक प्रदेश भिन्न भिन्न, एक एक प्रदेश का क्षेत्र भिन्न भिन्न, एक एक समय की पर्याय भिन्न भिन्न, हरेक गुण का एक एक गुणांश भिन्न भिन्न, ये सब इस प्रकार के भिन्न है कि इनमें यह वह नहीं है, ऐसा व्यतिरेक लक्षण पाया जाता है। व्यतिरेक किसको कहना है, यह वह नहीं है, ये दूसरा दूसरा ही है, इसको व्यतिरेक कहेंगे। और ये अनेक है, ये कौन, ये भी प्रदेश क्षेत्र पर्याय गुणांश वो अनेक है और व्यतिरेक वाले, वैसे गुण अनेक होने पर भी एक है, यानी उसको व्यतिरेक नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक गुण में यह वही है ऐसा लक्षण रखता है। यानी जैसे हमने ज्ञान गुण की बात करेंगे तो सुख भी वही है ना, वो जो ज्ञान के जिस एक गुण के द्वारा द्रव्य बताया दूसरे गुण के द्वारा भी हम वही बात करेंगे। तो देखो यह वही है, क्या कहा, गुण अनेक होने पर भी प्रत्येक गुण में यह वही ऐसा लक्षण घटता है, वे गुण अनेक होने पर भी एक कैसे है, और उन सब में यह वही वह नहीं है ऐसा व्यतिरेक लक्षण न घटकर यह वही है ऐसा अन्वय लक्षण किस प्रकार घटता है। सो पहले 144 में तथा आगे यानी अभी इसके नेक्स्ट श्लोक से 153 से 156 तक और फिर आगे 481 से 492 तक समझाया है। अभी हमने 144 में देखा था, देखो पेज नंबर 34 निकालना। देखो प्रत्येक भावार्थ हाँ सेकंड पैराग्राफ, उसके पहले भी लिखा था अन्वयी गुण होते हैं और वो सपक्ष होते हैं, वो प्रतिपक्ष वाले नहीं होते, विरोधी नहीं होते, सर्वता भिन्न नहीं होते। उसी को उन्होंने भावार्थ में समझाया था, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, उनके समुदाय का नाम ही द्रव्य या अन्वय या वस्तु है। उन सब गुणों का परस्पर में सपक्ष भाव है, विपक्ष भाव नहीं है, क्योंकि उनका अन्वय द्रव्य वस्तु एक है। भेद दृष्टि से नाना होने पर भी अभेद दृष्टि से सब गुण एक गुण ही है। किसी भी गुण की मुख्यता से कथन करते समय शेष गुणों का भी गौण रूप से उसी में कथन हो जाता है, इसलिए एक वही कहलाता है उसको। किसी एक का नाम लो सभी उसमें गौण रूप से आ जाते हैं और सब गुणों का रूप उसी में समाविष्ट हो जाता है। उसके लिए हमने वो सोने का उदाहरण भी दिया था। पर्याय में क्या होता है वो तो अलग अलग होते हैं। अभी हम आते हैं अपने पेज नंबर 36 पर, 153 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, यही बात यहाँ पर भी बताने वाले हैं। स्वबुद्धौ ज्ञानं जीवस्व सर्वसारेण अथ चैकश स्वबुद्धौ दृग्वा जीवस्व सर्वसारेण। गुण अनेक होने पर भी व्यतिरेकी कैसे नहीं है किंतु एक अन्वयी कैसे है इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि एक बार अपनी बुद्धि में ज्ञान ही अपने संपूर्ण सार रूप से जीव है, अथवा एक बार अपनी बुद्धि में दर्शन ही अपने संपूर्ण सार रूप से जीव है। यानी जिस गुण की अपेक्षा देखो पूरा ही द्रव्य उस रूप हम सोच सकते हैं, बुद्धि में ले सकते हैं। देखो भावार्थ, ज्ञान की दृष्टि से जीव को देखो तो सारा जीव ज्ञान रूप है, फिर उसी जीव को दर्शन की दृष्टि से देखो तो सारा जीव दर्शन रूप है, फिर उसी को सुख की दृष्टि से देखो तो सारा सुख रूप है, चाहे जिस गुण की दृष्टि से देखो उसी रूप है। बस इसीलिए गुण अनेक होने पर भी एक अन्वयी है, पर्यायों में यह बात नहीं है, अपने अनुभव से मिलाकर देखिए। पर्यायों में एक जो पर्याय वह दूसरी नहीं है। गुणों में जैसा अन्वयीपना घटित होता है, किसी एक गुण रूप देखो तो ऐसे पर्यायों में नहीं है। यहाँ क्या लिखा, सारा ज्ञान की दृष्टि से देखो तो सारा जीव ज्ञान रूप है, उसी जीव को दर्शन रूप से देखो। अभी पर्याय को उसी समय का द्रव्य नहीं देख सकते, फिर दूसरे समय वाला देखना पड़ेगा। जो एक समय में बोध रूप था, दूसरे समय में मान रूप हो गया, तो या समय दृष्टि था मिथ्या दृष्टि हुआ, तो वो तो वही का वही नहीं कह सकते हम, वो चेंज हो गया है, व्यतिरेक हो गया वो। 154 तत्एव यथा नेके पर्यायासैष नेति लक्षणतः व्यतिरेकिनश्च न गुणाः तथेति सोयम् लक्षणाभावात्। इसलिए जैसे पर्याय यह वही वह नहीं है इस लक्षण से अनेक है, यह वह नहीं व्यतिरेक लक्षण घटित होता है और वे अनेक है, पर्याय कितने हैं तो अनेक है, प्रत्येक समय में एक एक है, अनादि से अनंत काल तक विद्यमान है, तो हम कहेंगे विद्यमान है, एक के बाद एक आते रहते हैं। तो कहते हैं पर्यायों में कौन सा लक्षण घटित होता है, यह वह नहीं है, और इसीलिए व्यतिरेकी है, पर्यायों को व्यतिरेकी कहा,
गुणों को अनुरूप।
हाँ, उस प्रकार अनेक भी गुण यह वह नहीं है इस लक्षण के न घटने से व्यतिरेकी नहीं है। ज्ञान गुण की अपेक्षा हम कहेंगे यह ज्ञान गुण है या ये द्रव्य है ज्ञान में, उसी को हम सुख में गर्भित करके सुख को पूरा सुख में कह सकते हैं, वहां व्यतिरेक नहीं है, अन्वय है, भावार्थ है। अब पर्याय ने मोटी स्थूल रूप पर्याय ली, उन्होंने देव मनुष्य नहीं है और देव अपने को मनुष्य रूप नहीं दिखला सकता, अतः वह व्यतिरेकी है, क्योंकि जो मनुष्य पर्याय का नाश हुआ फिर उसके बाद देव पर्याय उत्पन्न हुई, तो अभी वो देव पर्याय में, अभी वो मनुष्य पर्याय में नहीं है, यानी जिस समय देव पर्याय में है उसी को वो मनुष्य पर्याय रूप से नहीं अपने को दिखा सकता, किंतु गुणों में यह बात नहीं है। जो ज्ञान है वह दर्शन नहीं है ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वो है, दो बार निगेटिव आ गया ना, जो ज्ञान रूप जीव है वही दर्शन रूप जीव है, पर्यायों में यह वह नहीं है ऐसा ही लक्षण घटता है, किंतु गुणों में यह वही है ऐसा ही लक्षण घटता है, इसी से पर्याय व्यतिरेकी है और गुण अन्वयी है। व्यतिरेकी यानी जिनमें व्यतिरेक पाया जाता है और अन्वयी यानी जिनमें अन्वय पाया जाता है। 155 तल्लक्षणम यथा स्यात् ज्ञानम जीवो येव तावंश जीवो दर्शनमिति वा तदभिज्ञानासैव तावंश। उस गुण के अन्वयपने का लक्षण इस प्रकार है कि जैसे ज्ञान जीव है ऐसा कहने पर जो जितना जीव आया, दर्शन जीव है यह कहने पर भी वह ही जीव उतना ही आया, यह प्रत्यभिज्ञान से सिद्ध है। प्रत्यभिज्ञान से सिद्ध है, हमने किसको कहा, वो जो रूप ज्ञान यह वही है ऐसा हमको जो ख्याल में आता है ना, जैसे हमने देखा किसी बच्चे को छोटा था तब हमने देखा था, फिर 10 साल के बाद वो तो एकदम कॉलेज गोइंग बॉय हो गया, तो कहते हमने अरे पहचानने में नहीं आता, फिर भी वही है ये हमने पहचान, उसके बाहर कुछ चेंजेस हो गए हैं परंतु यह वही है ये हमने प्रत्यभिज्ञान से जान लिया है। तो प्रत्यभिज्ञान में यही तो भाषित होता है, यह वही है बाबा, गुणों में अन्वय लक्षण ही घटता ही लगाया, कथनचित है ऐसा भी नहीं, अन्वय का ही लक्षण घटित होता है। जिस समय जीव ज्ञान स्वरूप कहा जाता है उस समय वह उतना ही है, और जिस समय जीव को दर्शन स्वरूप कहा जाता है वह उस समय भी वह उतना ही है। क्या जब हम जीव को ज्ञानमय कहेंगे या ज्ञान स्वरूप कहेंगे तो जीव थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और दर्शन स्वरूप कहेंगे तो थोड़ा जीव का छोटा हो, ऐसा नहीं है, वो वही का वही है, उस समय भी वह उतना ही है। ज्ञान अथवा दर्शन रूप जीव को कहने में यह वही है ऐसा ही प्रत्यभिज्ञान होता है, यह वह नहीं है ऐसा व्यतिरेकी ज्ञान नहीं होता, इसलिए गुण अनेक होने पर भी अन्वयी एक है व्यतिरेक नहीं है। 156 एष क्रम सुखादिषु गुणेषु वाच्यो गुरुपदेशाद्वा यो जानाति स पश्यति सुखमनुभवति इति स एव हेतुश्च। गुरुगम से यह क्रम, गुरुगम यानी गुरु के सिखाने से, गुरुगम से यह क्रम सुखादि गुणों में भी लगा लेना चाहिए। सानिध्य
में
एक गुरु का एक शब्द है एक्चुअली, भिन्न भिन्न उन्होंने डैश कर दी है। यह क्रम सुखादि गुणों में भी लगा लेना चाहिए, सुखादि सुख गुण पर भी ऐसे ही घटित करेंगे आप, क्या जो जीव जानता है वही देखता है और वही सुख को अनुभव करता है, इन सब कार्यों में यह वही है ऐसी ही प्रतीति होती है। इस कारण गुण अनेक होकर भी व्यतिरेकी नहीं है, किंतु सब गुण एक गुण रूप है क्योंकि उनका अन्वय द्रव्य एक है। विद्ने एक गुण दूसरे गुण रूप, उसका एक उनका रूप दूसरे में, ये है यानी एक गुण में अनंत गुणों का रूप आ जाता है और एक गुण का रूप अनंत में आ जाता है, इसलिए सब गुण एक गुण रूप है क्योंकि उनका अन्वय द्रव्य एक है। अब यही बात समझाते हैं, गुण व्यतिरेकी नहीं किंतु अन्वयी कैसे है। द्रव्य अनंत गुणों का तादात्म्य एक अखंड पिंड है, तादात्म्य ने एक में हुआ है ना, ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न तो ये ज्ञान है ये दर्शन है, ऐसे अलग अलग से तो बैठे नहीं है वो, और वो कैसे अनंत गुणों का तादात्म्य एक अखंड पिंड है। हमने समझने के लिए उसके भेद कर करके समझाया, और वह भी ऐसा पिंड है जिस गुण की विवक्षा करके उसे देखो सारे का सारा द्रव्य उसी रूप प्रतीत होगा। बहुत महत्व की बात है, पूरा सिद्धांत यहाँ ये पूरा पैराग्राफ है ना पढ़ेंगे, यही गुणों में अन्वयीपना है। अब इसके लिए दृष्टांत क्या है, जैसे एक सोने की लठ लीजिए, लठ यानी उसकी जो कोई ऐसी बनाते ना स्टिक जैसा, कोई लड़ी कहेंगे उसको, लकड़ी कहेंगे, उसे पीलेपन की दृष्टि से देखिए तो संपूर्ण लठ पीली दृष्टिगत होगी, फिर भारीपन से देखिए सारी भारी दिखाई देगी, फिर चिकनेपन से देखिए सारी चिकनी। एक क के ऊपर कुछ बिंदी आ गई वो निकाल देना, यद्यपि पीला भारी, एक कौमा लगा लो, पीले के बाद एक कौमा, भारी के बाद एक कौमा, स्निग्ध लक्षण, लक्षण भेद से भिन्न है, क्या कहे, ये जो पीलापन है भारीपन है और स्निग्धपन है ये क्या है, लक्षण पने से वो भिन्न भिन्न है, लक्षण भेद से भिन्न है, पर उनका अन्वय द्रव्य इस कमाल से एक है कि सब गुण एक में अंतर्लीन होकर अपने को उस विवक्षित गुण रूप ही उपस्थित कर देते हैं, यही गुणों का अन्वयीपना है। पर्यायों में यह बात नहीं है, जो देव रूप है वह अपने को मनुष्य रूप नहीं दिखला सकती किंतु भिन्न भिन्न रूप ही दिखलाएंगी, अतः वह व्यतिरेकी ही है, वे वास्तव में भिन्न भिन्न है, यानी उसमें द्रव्य वही का वही होने पर भी वो पर्याय वही का वही नहीं है, वो तो दूसरी ही है। इसी प्रकार एक आम को लीजिए, उसको रूप की दृष्टि से देखिए सारा पीला है, रस की दृष्टि से देखिए सारा मीठा है। इसी प्रकार एक जीव को लीजिए, उसे ज्ञान की दृष्टि से देखिए सारा जानने वाला है, दर्शन की दृष्टि से देखिए सारा देखने वाला है, सुख की दृष्टि से देखिए सारा भोगने वाला है, क्योंकि सबका तादात्म्य अन्वय एक है। इसलिए सब एक दूसरे में अंतर्लीन होकर अपने को एक रूप उपस्थित करते हैं, इसलिए अन्वयी है। गुण वास्तव में भिन्न भिन्न नहीं है, पर्याय में यह बात नहीं है, कुंडल अपने को कड़ा रूप उपस्थित नहीं कर सकता, अतः उनमें वास्तव में भिन्नता है, अतः उन्हें व्यतिरेकी कहते हैं। पर्याय का लक्षण यह वह नहीं है ऐसा ही है, और गुण का लक्षण यह वही है ऐसा ही है, बस यह व्यतिरेक और अन्वय का अंतर जानने की चाबी है। इस ग्रंथ में व्यतिरेक का स्पष्टीकरण 147 से 152 में है जो अभी हमने पढ़ा, तथा अन्वय का स्पष्टीकरण 144, 153 से 156 तथा 481 से 492 तक है। इनको अभ्यास करने से व्यतिरेक और अन्वय का अंतर झलक जाएगा। यह वही है। यहाँ क्या देखना चाहते हैं, हम क्या बताना है? देखो, ये तो गुणों के जो भेद है वो समझने के लिए, द्रव्य कैसा है जानता भी है, वो देखता भी है, वो सुख भी है, उसमें चारित्र भी है, वो भी है भी है भी है, परंतु एक एक एंटिटी है कि सर्वथा भिन्न है। आप भेद की दृष्टि से देख रहे हो उसको। ज्ञान गुण जानने का कार्य करता है, दर्शन देखने का कार्य करता है, परंतु वो गुण को मत देखो। जीव द्रव्य जानने का भी कार्य करता है, देखने का भी कार्य करता है, सुख का भी कार्य करता है, सब। अब जिस एंगल से देखो आप उसको, वही का वही है। यानी उस केवल जीव वही है ना, वो सारे अन्य गुण उस गुण रूप से प्रकट हो रहे हैं। देखो 38 पेज पर आते हैं। अर्थ का निरूपण 157 से 159 तक। पहली लाइन में जो है ना, अथ चोदिष्टम, वो डबल द चाहिए, ध्रुव जैसा हुआ है, ध्रुव दिखता है ना, वो चोदिष्टम चोदिष्टम अथ चो उद्दिष्टम पढ़ी हम। देखो अथ चोदिष्टम प्रागप्य था इति संज्ञया गुणा वाचा तदपि न रूढिवशादिह किन्त्वर्थाद्यौगिकं तदेवेति। और जो पहले कहा गया था कि गुण अर्थ इस नाम से भी कहने योग्य है, वह भी रूढ़िवश नहीं है, किंतु अर्थ से वह भी यौगिक ही है। तदपि न रूढ़िवशात, यानी रूढ़ी के कारण उसको अर्थ नहीं कह दिया, परंतु वह अर्थ नाम भी उसका सार्थक है, उसको कहेंगे यहाँ पर। किंतु अर्थात यौगिकम तदेव इति, यौगिक है। उसका एक्सप्लेनेशन आएगा 158 में। स्यादृगता विति धातु तद्रूपोऽयं निरुच्यते तद्नहि अन्वर्थोऽनुगतार्थात् अनादिसन्तानरूपतोऽपि गुणः। रूप यह एक धातु गति अर्थ में है, अर्थ रू से अर्थ हो गया, क्या कहते हैं धातु समझते हैं ना, वर्ब वर्ब संस्कृत में जो क्रियापद है उसको धातु कहते हैं। तो रू से अर्थ शब्द तैयार हुआ, तो रू यह धातु उसका कौन से मीनिंग है, गति यानी जाना के अर्थ में, यानी जाना यह उसका मीनिंग है। रू शब्द का जो मीनिंग क्या है, तो जाना गति में। अर्थ यह शब्द उसका रूप उसके जानने वालों द्वारा कहा जाता है, यानी रू से अर्थ यह शब्द हुआ, ये व्याकरण के जानकार है, वो उसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं। गुण का अर्थ नाम अनवर्थक ही है, क्योंकि जो गमन करे उसको अर्थ कहते हैं, और गुण भी अनादि संतान रूप से साथ साथ चले जाते हैं, यानी वो कायम रहते हैं ना, वो तो अनादि से अनंत काल तक है यानी परिणमन करते हुए भी है। नित्य और अनित्य दोनों हमने पहले देखा था, उसमें घटित होता है। तो कहते जो गमन करे उसको अर्थ कहते हैं, इसलिए गुण भी अनादि अनंत साथ साथ चले जाते हैं। अभी इसी को ये आगे के श्लोक में स्पष्ट करेंगे 159 में। अयमर्थ संति गुणा अपि किल परिणामिनः स्वतः सिद्धा नित्यानित्यत्वादपि उत्पादादि त्रयात्मकः सम्यक्। गुरु धातु से बने हुए अर्थ शब्द का भाव यह है कि गुरु शब्द से हुए अर्थ धातु जो है उससे अर्थ शब्द बन गया, तो उसका भाव क्या, उससे क्या समझना कि गुण भी नियम से स्वतः सिद्ध परिणामी है। वो स्वतः सिद्ध एक शब्द है और परिणामी भिन्न शब्द है। वो स्वतः सिद्ध परिणामी ऐसा नहीं लेना, सिद्ध परिणामी उन्होंने छपा है परंतु स्वतः सिद्ध एक शब्द है और परिणामी भिन्न है। परिणामी का अर्थ हमने क्या देखा था, कायम रहते हुए भी वो परिणामशील है। उसकी द्रव्य के लिए परिणामी शब्द आया था, यहाँ गुण के लिए भी ले रहे कि गुण भी यानी द्रव्य की बात हमने देखी थी, स्वतः सिद्ध भी और परिणामी भी है। इसलिए कहते गुण भी नियम से स्वतः सिद्ध परिणामी है, इसलिए वे कथनचित नित्य भी है और कथनचित अनित्य भी है, और इसी से उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य अच्छी तरह घटते हैं। क्योंकि गुणों में घटते और द्रव्य तो क्या है, गुणों का समूह ही है, उसमें तो घटते पहले करके बताया था। अब गुणों के भेद 160 से 163 तक। अस्ति विशेषस्तेषां सति ससमाने यथा गुणत्वेपि साधारणास्ते एके केचिद् साधारणा गुणा सन्ति। यद्यपि गुणत्व सामान्य की अपेक्षा से सभी गुणों में समानता है। गुणत्व सामान्य ने गुण का लक्षण क्या है, गुण की परिभाषा क्या है, गुण 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 की परिभाषा, द्रव्य के संपूर्ण भागों में उसकी संपूर्ण अवस्था में रहते हैं वो गुण कहते हैं। ये कौन से गुण की परिभाषा है, विशेष गुण की के सामान्य गुण की, यही कह रहे। क्या लिखा, गुणत्व सामान्य की अपेक्षा से सभी गुणों में समानता है। गुणत्व सामान्य ने गुणपना, गुण का जो लक्षण है वो सभी गुणों में घटित होता है, वो विशेष गुण हो या सामान्य गुण हो। तथापि उनमें विशेषता भी है। क्या कहते हैं, वो गुण ये सामान्य रीति से सब गुण की अपेक्षा सभी वो लक्षण घटित होता है, यानी गुणत्व सब में है। क्या गुणत्व है कि संपूर्ण भागों में सभी अवस्था में रहते हैं, फिर भी गुण की अपनी अपनी विशेषता अलग अलग है। तो कहते फिर भी उनमें विशेषता भी है, कितने ही उनमें साधारण गुण है और कितने ही असाधारण गुण है, जिसको हम सामान्य गुण और विशेष गुण कहते हैं। साधारण वैसा ही गुण अन्य द्रव्य में भी पाया जाता है, उसको साधारण कहेंगे। असाधारण इन्हें अपने अपने द्रव्य की वो विशेषता है, वो उसमें रहेगा। अर्थात जो सब द्रव्यों में रहे वे सामान्य और जो किसी किसी द्रव्य में रहे वे विशेष कहलाते हैं। सब द्रव्य में रहने एक ही गुण सब में मिलकर नहीं रहता है, अस्तित्व हरेक का अपना अपना भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने गुण होते हैं। फिर भी सब में वैसे वैसे वह अपना अपना पाया जाता है, तो उसको हम कहेंगे सामान्य गुण है। अब कहेंगे ज्ञान दर्शन ये जो गुण है वो कैसे असाधारण या विशेष है, वो मात्र जीव द्रव्य में पाए जाएंगे, उद्गल धर्म धर्म आकाश में नहीं। 162 तेषामिह वक्तव्ये हेतु साधारणैर्गुणैर्यस्मात् द्रव्यत्वमस्ति साध्यम् द्रव्य विशेषस्तु साध्यते इतरैः। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका कारण यह है कि साधारण गुणों से तो द्रव्य सामान्य सिद्ध किया जाता है, यानी जहाँ जहाँ सामान्य गुण पाए जाते हैं उसके कारण यह द्रव्य है ये सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है वो अस्तित्व गुण भी है, वस्तुत्व भी, द्रव्यत्व भी है, प्रमेयत्व अगुणत्व, ये सभी गुण है, कहीं ये द्रव्य है। और विशेष गुणों के द्वारा क्या सिद्ध होता है, वो कौन सा द्रव्य है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, साधारण गुणों से तो द्रव्य सामान्य सिद्ध किया जाता है और विशेष गुणों से द्रव्य विशेष सिद्ध किया जाता है। द्रव्य सामान्य यानी वो द्रव्य है ये बात सिद्ध होती है, और द्रव्य विशेष यानी वो कौन सा द्रव्य है, जीव है कि पुद्गल है, क्योंकि हम कहेंगे जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण है वो तो पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि वो उसके असाधारण गुण है, और असाधारण गुणों के द्वारा वो कौन सा द्रव्य है ये बात सिद्ध हो जाती है। 163 सदति गुण स यथा द्रव्यत्व साधको भवति, अथ च ज्ञानं गुण इति द्रव्य विशेषस्य साधको भवति। देखो कितना आसान है श्लोक। साधक होता है कौन, सत इति गुण, सत यह गुण किसका साधक यानी किसको सिद्ध करती है, ये द्रव्य को सिद्ध करती है। सत नाम का जो गुण है कौन सा द्रव्य सिद्ध होता है, तो सभी द्रव्य, क्योंकि वो सामान्य लक्षण है, सभी द्रव्य में पाए जाते हैं। और ज्ञान गुण द्रव्य विशेष को सिद्ध करती है यानी जीव द्रव्य को। देखो इसका मीनिंग अर्थ उदाहरण इस प्रकार है कि सत यानी अस्तित्व यह गुण सामान्य द्रव्य का साधक है, सामान्य द्रव्य का साधक है वो द्रव्य है इतनी बात सिद्ध होती है। चौ द्रव्य से कोई भी हो सकता है क्योंकि सब में यह गुण है। और ज्ञान गुण द्रव्य विशेष यानी जीव का साधक है, तो उसका प्रकट लक्षण है, तो हम कहेंगे जहाँ ज्ञान गुण है वो तो जीव द्रव्य है। मामार्थ सत गुण यानी अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों में समान रीति से पाया जाता है, इसलिए सभी द्रव्य सत कहलाते हैं। परंतु ज्ञान गुण सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता किंतु जीव में ही पाया जाता है, इसलिए ज्ञान विशेष गुण है और सत सामान्य गुण है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों में सामान्य गुण समान है और विशेष गुण जुदे जुदे है, यानी जितने द्रव्य वो सामान्य जो जो है जो कॉमन है सब में, सब में अपने अपने पाए जाएंगे। नो वस्तु निरूपण महाधिकार में गुणत्व को निरूपण करने वाला तीसरा अवांतर अधिकार समाप्त हुआ। देखो हमने वो द्रव्य की बात उठाई थी, पहले द्रव्य का निरूपण किया, फिर गुण का गुणत्व की बात यहाँ बताई जा रहे हैं, अब पर्याय की बात चलेगी। चौथा अवांतर अधिकार है उसमें पर्यायों का निरूपण चलेगा 164 से 198 तक। 164 पढ़ेंगे। उत्तम हि गुणानाम यह लक्षम तल्लक्षणम यथागमतः संप्रति पर्यायाणाम लक्ष्यम तल्लक्षणम च वक्ष्यामः। वक्ष्यामः यानी हम अभी बता रहे हैं, मैं बताता हूँ, क्योंकि इस ग्रंथ में आगम के अनुसार यथा आगमतः, पहली लाइन में लास्ट शब्द है आगमतः यानी आगम से, यानी कोई अपने मन से कुछ भी बातें नहीं बता रहे, आगम के आधार से ये सब बातें बताएगी, आगम के अनुसार बता जाएगी। यथा आगमतः यानी यथा यानी जैसा आगम में बताया है वैसा, क्या तत् लक्षणम उसका लक्षण। तो देखो इस ग्रंथ में आगम के अनुसार गुणों का लक्ष्य और लक्षण तो कहा गया, गुणानाम लक्ष्यम और लक्षण, अब पर्यायों का लक्ष्य और लक्षण कहते हैं। क्रमवर्तिनो यह नित्या अथ च व्यतिरेकिनश्च पर्याया उत्पादवे रूपापि च द्रव्यात्मकाः कथञ्चिच्चम्। देखो क्रमवर्ती ना, इन्हें क्रमवर्ती नो, इन्हें क्रमवर्ती ना, इन्हें अनेक है ना, तो पर्याय कैसे, तो क्रमवर्ती है। नीचे लिखा देखो, पर्याय क्रमवर्ती ही अनित्य, यानी अनित्य व्यतिरेकी ना, वह अनेक वचन किया हमने व्यतिरेकी, और नीचे के लाइन में क्या लिखा, उत्पाद वे रूपा पीछे द्रव्यात्मक, उत्पाद वे रूप और कथनचित द्रव्य स्वरूप होती है, यह कथनचित लगाया द्रव्य के लिए। क्या क्या बताई पर्याय, क्रमवर्ती है, अनित्य होती है, व्यतिरेकी है, उत्पाद वे रूप है, कथनचित द्रव्य। इसकी अधिक चर्चा हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तकनम सदा देत है।